हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो अभी प्रभु जी का प्रवचन हिंदी में होगा, तो आप कृपया इस तरफ, जिन लोगों को लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो कृपया इस तरफ फेस करके बैठिए, इस तरफ माता जी लोग बैठिए और इस तरफ प्रभु जी लोग, ये साइड में माता जी लोग आ जाए लेडीज और ये साइड में प्रभु जी लोग जेंट्स। और जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं, अभी 11 बजे क्लास शुरू हुआ, अभी 12 बजे खत्म होगा, एक घंटा आपको बैठना पड़ेगा। बीच में अगर किसी को उठ के जाना है तो पीछे बैठिए, जिसको एक घंटा प्रवचन सुनना है आगे बैठिए, जिसको नहीं सुनना है तो पीछे की तरफ बैठिए। आपको लगता है कि मेरे को 10 मिनट सुन के जाना है तो पीछे बैठिए, तो जिन लोग को एक घंटा पूरा बैठना है वो आगे आ जाइए। 12 बजे तक क्लास चलेगा, अभी आगे आ जाइए, जिनको बैठना है आगे आ जाओ। लेडीज उस साइड में, प्रभुपद के साइड में, और जेंट्स इस साइड में।
हरे कृष्ण।
तो आज हमारा सौभाग्य बात है, तो हमारे बीच में आज श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु, जो कि यहाँ पर खास वरिष्ठ डिवोटी हैं, तो इनके द्वारा आज हमारा संडे फेस्ट की कथा होगी। कृपया ध्यान से आप सुनिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा। चलो बोलिए कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Sab boliye Sarvani bhana Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai 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 Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Sab log taali bajaiye Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जोर से आवाज आना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा जय गौरांग नेताय गौरांग नेताय गौरांग नेताय जय गौरांग नेताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय नित्य गौर हरिबोल 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 नित्य गौर గౌర ప్రేమానంది హరినామ సంకీర్తనకి శ్రీల ప్రభుపాదకి ఓం అజ్ఞాంతి మిరాందస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురోన్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ ఔర్ ఏక్ బార్ బోలెంగే దోనో హాత్ ఊపర్ కర్కే దోనో హాత్ ఊపర్ కర్నా మత్లబ్ हे भगवान मैं आपको शरण आ रहा हूँ हैंड्स अप यू नो शरणागत मैं शरण आ रहा हूँ जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा था हे कृष्ण हे गोविंद वैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और थोड़ा जोर से बोल सकते हैं आप लोग नहीं और थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे आप इतने बड़ी मात्रा में हैं और मेरा आवाज आपसे बड़ा है तो जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आज बहुत विशेष दिन है और मकर संक्रांति पर्व में आपका गोवर्धन कॉलेज में स्वागत है तो कहीं भी हम तीर्थ स्थान जाते हैं सब लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं कुछ समय अपने जीवन का थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण बिताए इस लक्ष्य से आए हैं तो आध्यात्मिक जीवन में कहीं भी मंदिर जाते हैं तीर्थ स्थान जाते हैं ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ जाकर श्रवण करना नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभोनय श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम मतलब हम सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके प्रति जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है हर एक के क्योंकि ये जीव आत्मा जो है भगवान का अंश है। मम ही अंश जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन काल के लिए ये जो आत्मा जो है शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, लेकिन जो शरीर को धारण करती है वो जो आत्मा है वो तो भगवान का अंश है। हम शरीर को पोषण करने के लिए ये जो अपना जो भोजन करते हैं शरीर के पोषण के लिए है, लेकिन आत्मा का जो पोषण है क्योंकि भगवान का अंश होने की वजह से आत्मा का पोषण जो है खाली जब हम भगवान की लीलाओं का भजन करते हैं कीर्तन करते हैं उसे आत्मा का पोषण होता है, उसे आत्मा को संतुष्टि और आनंद मिलता है। इसलिए कहीं भी जाते हैं अपने, इसलिए गीता में कहा गया है कि सततम कीर्तयन्तमाम एतन्तश्च दृढ़रतः, सदैव हमें जो है भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। और खास ऐसे स्थान पे जब आते हैं तो यहाँ पर हमें और ऐसा अनुकूल वातावरण मिलता है, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुने, क्योंकि भले जो लोहा होता है चुंबक की प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है उसमें वो लोहा जो है चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं होता है। कौन सी स्थिति होती है? जब उस पर जंग चढ़ जाता है ना, जंग चढ़ता है तभी लोहा जो है चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं होता। वैसे हम भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जंग चढ़ गया है। किस पे? आत्मा के ऊपर, हृदय में जंग। कौन सा जंग है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जंग चढ़ने की वजह से जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। तो जब ऐसी जगह पे आते हैं तो क्या होता है? श्रवणादि शुद्ध चित्ते कुरय उदय। श्रवण जब हम करते हैं, कौन सा श्रवण? जब भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं। जैसे रुक्मिणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, भगवान कृष्ण तो द्वारका में रहते थे, रुक्मिणी कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में अमरावती, कौंडन्यपुर रुक्मिणी का मैका है, तो वहाँ रुक्मिणी रहते थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम था। उन्होंने पत्र जब लिखा कहा कि ऐसा नहीं कि मैं भौतिक ये शरीर के प्रति आकर्षण है, लेकिन ये आपके बारे में श्रवण जो किया है, किसे? नारद मुनि, पर्वत मुनि, अनेक ऋषि मुनि, जब भीष्मक महाराज रुक्मिणी के पिता थे उनके यहाँ आते थे, उनका जब वो भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे, चर्चा सुनते सुनते रुक्मिणी को भगवान कृष्ण के प्रति वो प्रेम जर जाता है। तो वैसे भले वो कुछ समय के लिए उसके ऊपर आवरण है, लेकिन जब बार बार सुनते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग जंग को घिसते हैं तो शुद्ध लोहा जो बाहर आ जाता है तो चुंबक के प्रति आकर्षण होता है। वैसे ये जो अपने हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इसको निकालने के लिए जो है हमें ऐसे स्थान में आकर श्रवण करना, और खास करके हमने जो पहले नामस्मरण किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो आज विशेष दिवस है मकर संक्रांति। संक्रांत जब सूर्य एक राशि से एक दूसरे राशि में प्रवेश करता है, संक्रमण होता है, उसे कहते हैं संक्रांति। और आज का दिन है जब सूरज ये मकर संक्रांति धेनु इसे राशि से मकर राशि में संक्रमण होता है, प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। तो वैसे हर महीने जो संक्रांति है लेकिन ये जो संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण है, क्यों? जैसे हमने दीपावली के समय नया वर्ष मनाते हैं, पाड़वा नया वर्ष होता है, साउथ में आज नया वर्ष मनाते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी नया वर्ष होता है, वैसे आज के दिन जो है देवताओं का नया वर्ष होता है, देवताओं का दिन शुरू होता है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर किसका है आज? देवताओं का है। हमारा हैप्पी न्यू ईयर दिवाली के दिन हुआ, पर इंग्लिश चैनल के अनुसार 1 जनवरी को हुआ, लेकिन अभी जी आज जो है किसका हैप्पी न्यू ईयर है? देवताओं का हैप्पी न्यू ईयर है। तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन, आज जो है ये मकर राशि में प्रवेश करके सूर्य जो है आज से मकर सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। आज तक जो दक्षिणायन था तो उत्तरायण और दक्षिणायन अपने जो एक वर्ष होता है पृथ्वी को पूरी परिक्रमा करने के लिए सूरज को एक वर्ष लगता है, तो उसमें एक जो छह महीने होते हैं वो दक्षिणायन होता है और छह महीने जो है उत्तरायण होता है। और ये देवताओं का दिवस होने की वजह से एक इस छह महीने में उत्तरायण में सबसे ज्यादा शुभ कार्य किए जाते हैं। दक्षिणायन में इतने मुहूर्त नहीं होते शुभ कार्य करने के लिए, लेकिन जो उत्तरायण जब शुरू होता है तो इसमें एक ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य करने का जो है अवसर और मुहूर्त भी जो है इसमें ज्यादा होते हैं, और इसलिए इसे देवायन कहते हैं, और जो दक्षिणायन के छह महीने से होते हैं उसे पितरायन कहते हैं। देवायन है, देवताओं का दिन है, और देवताओं का जो दिवस है इसमें ऋषि मुनि जो है सबसे ज्यादा तपस्या में और अपने ध्यान धारणा जो है इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा महत्व इस समय को देते हैं। और हम सबको पता है कि भगवान विष्णु इस दिन उन्होंने जो असुर का जो आतंकवाद था उसको नष्ट करने के लिए जो मंदार पर्वत के नीचे जो असुर के जो मस्तक है उसको दबा के रखा था, तो आज का दिन एक जो है एक असुर वृत्ति के ऊपर ये अच्छे वृत्ति का सुर वृत्ति का विजय का भी दिन होता है। और ये जो मकर संक्रांत है उसी दिन जो बहुत महान ऋषि मुनि होते हैं जो योगी होते हैं, ये योगी जो है ऐसी तपस्या करते हैं ऐसा ध्यान करते हैं कि जिससे वो अपने मृत्यु को भी नियंत्रण करते हैं। क्यों कैसे होता है, क्योंकि हर एक का जो आयु होता है वर्ष के ऊपर नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं कि 20 साल जिया है, 50 साल, 80 साल, लेकिन जब एक जन्म होता है तो हमारा आयु जो है वर्ष के ऊपर निश्चित नहीं होता है, हमारा आयु सांस के ऊपर निश्चित होता है। कितने सांस जीना है, उस सांस लेना है, उसके ऊपर आयु निश्चित होती है। तो कितने करोड़ सांस लेकर आया है, कभी कोई 5 साल में चला जाता है, कोई 20 साल में चला जाएगा, 70 साल में चला जाता है, लेकिन कितने सांस वो ले रहे हैं उसके ऊपर आयु निश्चित होती है। तो और खास करके जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राणायाम के द्वारा सांस को दीर्घ करते हैं। कोई अलग अलग प्रकार के अनुलोम विलोम भस्त्रिका अलग अलग प्रकार के जो प्राणायाम के प्रयोग होते हैं उससे सांस को दीर्घ करते हैं। तो कोई 20 सेकंड रोकते हैं, कोई 40 सेकंड रोकते हैं, कोई 1 मिनट के लिए रोकता है, ऐसे करते करते ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कई मिनटों के लिए सांस को रोक सकते हैं, कोई घंटों के लिए सांस को रोक सकते हैं, समाधि में जाते हैं तो कई दिनों तक सांस को रोक सकते हैं। तो क्या होता है, सांस रोकने की वजह से उनकी आयु बढ़ती है। तो इसलिए हम सुनते हैं कभी हिमालय में अरे कोई सांस हुए 200 साल जी रहे हैं, 400 साल जी रहे, 500 साल जी रहे, कैसे जीते हैं, सांस को रोकते हैं तो इतनी आयु उनकी बढ़ती है। तो वो सांस को रोककर जो है अपने इच्छा से शरीर को त्याग सकते हैं। तो ये जो दिन है मकर संक्रांति का वो दिन को चुनते हैं ताकि उस दिन के लिए रोकते हैं और उस दिन शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हम महाभारत में देखते हैं भीष्म पितामह इन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा था, 2 महीने के लिए रुके थे। अर्जुन के बाणों द्वारा भीष्म पितामह का जो शरीर छलनी हो गया था, इतने बाण लगे थे कि 2 बाण के बीच में एक उंगली भी जा नहीं सकती थी, इतने बाण लगे थे। लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु का वरदान होने की वजह से पितामह भीष्म उत्तरायण के लिए राह देख रहे थे। ऐसा नहीं कि वो तो इतने महान भक्त है कि उनको आवश्यकता नहीं है कि इस दिन मैं शरीर त्यागूंगा तो भी तो ही मुझे भगवत प्राप्ति होगी, उनके लिए जरूरत नहीं। फिर भी वो योगी लोगों को दिखाने के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए वो वैसा करते हैं। और भीष्म पितामह देते हैं कि आज के दिन जो है जब युधिष्ठिर महाराज अपने महल में बहुत ही ग्लानी में है, क्यों ग्लानी थे कि भीष्म पितामह को लग रहा था कि मेरी वजह से मुझे राजा बनना था, इसलिए एक इतना बड़ा संहार हुआ है, करोड़ों करोड़ों लोग जो है महाभारत युद्ध में मारे गए हैं, और कितने सगे संबंधी पितामह भीष्म को मेरी वजह से ऐसे शरशया पे गिरना पड़ा, गुरु द्रोण को शरीर छोड़ना पड़ा, ये सब जो है मेरे वजह से हुआ। ये एक वैष्णव का भाव होता है, वैष्णव जो है वो जो भी कुछ गलत होता है सोचते कि मेरी वजह से हो, मैं ही गलत हूँ, वैष्णव भाव होता है। इनकी नम्रता की वजह से उनका हृदय जो है वो अहंकार नहीं होता, नम्रता की वजह से वो दीन होते। तो पितामह भीष्म कहे वहाँ पर शर्ष या पे, और युधिष्ठिर महाराज को जब एक ग्लानी हो रही थी तो भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, स्वयं व्यास देव आकर उनको समझाते, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का जो डिप्रेशन है, ग्लानी है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अंततः भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप सब पांचों पांडव जो है हम लोग बाहर जाना है, आप सब लोग राज वस्त्र पहनकर रेडी हो जाओ, हम लोग शादी विवाह में जाना है तो अच्छे वस्त्र पहनकर। तो ऐसे तो बोला गया तो कहाँ जाना, बोले पितामह भीष्म को मिलने जाना। वे सोचे कोई बीमार व्यक्ति है, कोई मृत्यु शैया पे पड़ा है, क्या डेथ किसी का होगा तो उसको मिलने जाते, हम लोग थोड़े ऐसे राज वस्त्र पहन के नहीं जाते हैं, कोई इस साधारण वेशभूषा में जाते। लेकिन भगवान कृष्ण उनको कहते कि नहीं, आप राज वस्त्र राज मुकुट धारण करके चलिए, क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज पांच पांडवों को पितामह भीष्म ने हमेशा संघर्ष करते हुए देखा है, कई संघर्ष उनको गुजरना पड़ा है, कई सारे संकट उनके जीवन में आए हैं। जैसे भीम बचपन में ही उनको विष दिया गया था, मार डालने की कोशिश दुर्योधन के द्वारा की गई थी, जब खेलते खेलते वो विषैले खीर उनको पिला दी और बाद में नदी में डाल दिया गंगा में। तो अच्छा भगवान की कृपा थे कि वो नीचे चले गए और बाद में एक नाग उनको डसने लगे, तो वो और इनको जो पॉइजन पिलाया था तो उसका और जो नाग काट रहे थे उनका पॉइजन जो है वो एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण हो गया और वो वापस आकर उस नागों को मारने लगे, तो नागों को ऐसा पीटने लगे कि पितामह भीम को लेकर फिर वो नाग देवता के पास गए। तो वो तो कुंती महारानी के सगे में थे, तो उन्होंने भी और ज़्यादा शक्ति देकर भीम को वापस भेज दिया, द्रौपदी का वस्त्र ग्रहण करने की कोशिश की, वहाँ पे लक्षाग्रह में उनको मारने की कोशिश की, कई सारे संघर्ष। युधिष्ठिर महाराज का राज्य था वो दुर्योधन द्वारा छीन लिया गया था, तो उनको पता था पितामह भीष्म को एक धर्मराज है, इनके साथ सत्य है, स्वयं भगवान की कृपा है, वो देखना चाहते कि ये राजा बने। लेकिन कपट करके शकुनी दुशासन दुर्योधन जो है वो इनको राजा नहीं बनने दे रहे थे, बार बार उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और भीष्म पितामह चाहते कि धर्म कोई धार्मिक व्यक्ति जो है राजा बने, जो सही मायने में क्षत्रिय हो। इस तरह से पितामह भीष्म अपने जब तक वो वहाँ पर है राजकाल में वो देख नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप अच्छे वस्त्र पहन राज वस्त्र पहनकर चलिए, ताकि शरीर छोड़ने से पहले पितामह भीष्म को देखकर खुशी मिले। देखो भगवान का कितना अपने भक्तों के प्रति प्रेम होता है कि अंतिम उनके सांस तक वो सोचते कि उनको सुख कैसा मिले, उनको प्रसन्नता कैसे मिले, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, भक्त के लिए तो भीष्म के लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो अभी तक भगवान कृष्ण सोच रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज को और सारे पांच पांडवों को उनको द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए, और पितामह भीष्म वहाँ पर सबको युधिष्ठिर महाराज पांडवों को देखकर कि अभी राजा बने हैं प्रसन्न हुए। और भगवान कृष्ण उनको कह रहे हैं आप इनको थोड़ा समझाइए। देखिए भगवान अपने भक्त को बड़ा होने का हमेशा चाहते हैं। ऐसे तो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध था महाभारत का, भगवान खाली अपनी इच्छा शक्ति से सबको खत्म कर सकते थे। विराट रूप तो दिखाया, विराट रूप में दुर्योधन कर्ण दुशासन सब ऐसे दांतों के नीचे जो है कुचल जा रहे थे। भगवान को महाभारत का युद्ध खत्म करने कुछ सेकंड का जरूरी था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अर्जुन को हीरो बना दिया। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने भीष्म पिता को महा को ज्ञानी बना दिया, हीरो बना दिया कि आप समझाओ। और पितामह समझाने के बाद युधिष्ठिर महाराज जो है समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कई बार भगवान जो है अपने भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ाते हैं ताकि वो हीरो बने, वो जाकर प्रसिद्ध बने, वो जाकर वो ऐश्वर्य को प्राप्त करे। तो पितामह भीष्म जब समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को ना, उन्होंने तो कहते कि मुझे आप स्वयं होते हुए मैं कैसे ज्ञान दूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह आप हम में सबसे बुजुर्ग है, पितामह है, आपके साथ आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो लुप्त हो जाएगा, तो कृपा करके आपका जो ज्ञान का भंडार है दीजिए। तो उन्होंने कई सारे अध्याय में जो वर्णन है कैसे पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। और आज के दिन जो है वो अपने शरीर को त्यागते हैं, तो कैसे मतलब शरीर को कैसे त्यागना चाहिए वो पितामह भीष्म हमें सिखाते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण त्वा कलेवरम, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अंतिम परीक्षा को पास कर सके। अंतिम परीक्षा क्या है, हम यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, जिस प्रकार का शरीर हमने धारण किया है, जिस प्रकार का स्मरण किया शरीर छोड़ते समय, उस प्रकार का कलेवर शरीर हमें प्राप्त होने वाला है। इसलिए जीवन भर इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हम अंतिम क्षण में भगवान को स्मरण कर सके। आसानी से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर कुछ लग जाता है, थोड़ा सर दुखने लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, नाम स्मरण भी नहीं कर पाते हैं, मंदिर भी नहीं आ पाएंगे, सर दुखने लगता है, कुछ बीमारी हो जाती है। सोचिए जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं तो इतनी यातना, क्योंकि इतनी आसक्ति है इस शरीर के प्रति, हमारे शरीर से संबंधित है इनके प्रति इतनी आसक्ति अटैचमेंट है कि पार होना जो है बड़ा मुश्किल है। देखिए जैसे एक बार एक व्यापारी थे, कई वर्षों से व्यापार कर रहे थे, व्यापार करते करते जब रिटायर्ड हो गए, बच्चों ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया, तो लेकिन अभी सोचिए किसने 40-50 साल बिजनेस किया, इतना आसानी से वो बाहर तो नहीं आ पाएंगे, तो बार बार वो बच्चों को जाकर बोलते थे अरे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो मत करो, तो बच्चे भी कभी कभी तंग आ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अभी आप ऐसा करो, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। तो गांव से यात्रा जा रहे थे तो उनके साथ उनको भेज दिया, तो गांव के जो लोग थे बोले कि ठीक है हमारे साथ 20-25 लोग और एक बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो निकल गए। लेकिन जहाँ जहाँ दर्शन हो जाता था, दर्शन करके आते थे, जैसे आप अभी बैठे हैं, वो लोग जब बैठते थे तो उनका शुरू हो जाता था, क्या कैसे मैंने शून्य से जगत बनाया। तो देख पहले तो मैं गांव गांव में जो बाजार भरता था, हट भरता था, वहाँ पे जाके कपड़ा बेचता था, फिर बाद में एक टपरी चालू किया, फिर मैं दो टपरी, बाद में एक गाड़ा भाड़े से लिया, फिर एक दुकान, फिर अभी चार दुकान कपड़े के, अभी ऐसे करके मैंने इतना बिजनेस बढ़ाया। तो एक जगह पे नहीं, जहाँ जहाँ दर्शन करके मंदिर बाहर आते थे वो अपना स्टोरी चालू कर देते थे। तो कई दिनों के बाद जो लोग थे उन्होंने घर पे फोन किया कि भाई आपके पिताजी को वापस लेके जाओ। बोले क्या हो गया, बोले जहां जहां यात्रा करके दर्शन करके बाहर आते हैं वो अपना स्टोरी बनाना शुरू कर देते, बताना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग यात्रा का मूड जो पूरा खावा खो देते हैं, और ऐसा ना हो कि हम लोग का जो यात्रा का है भावना है वो छोड़कर हम लोग बिजनेस में लग जाए। हम लोग तो ये छोड़ छाड़ने के लिए बाहर यात्रा के लिए आए, लेकिन इनका बार बार सुन के हम लोग की इच्छा ना हो जाए कि वापस बिजनेस में घुस जाए। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय और थोड़ा यात्रा, हो सकता है कहीं थोड़ा बुद्धि अलग हो जाए, उनको कन्विशन हो जाए और वो वापस आध्यात्मिक में रमन करने लगे। ऐसा करते करते यात्रीगण जो है वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में एक गंगा जी बहते हैं, वहां पर बहुत सुंदर घाट है, 84 घाट है वाराणसी में। तो वहां पे एक घाट बहुत विशेष है, उसका नाम है मणिकर्णी का घाट। तो मणिकर्णी का घाट जो है वहां पर एक विशेषता यह है, वहां पर अंत्य संस्कार होते हैं, और इतने अंत्य संस्कार दिन में कम से कम 350-400 अंत्य संस्कार डेली होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो ये अंत्य संस्कार विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि वहां पर जब अंत्य संस्कार होता है तो वहां का ग्रंथ में वर्णन है कि शिवजी स्वयं काशी विश्वनाथ उनके कान में आकर राम नाम का स्मरण करते हैं, नाम राम नाम का जप करने की वजह से वहां पे जो अंत्य संस्कार होता है उसको मुक्ति मिल जाते हैं। ये महत्व होने की वजह से इतने सारे अंत्य संस्कार वहां पर होते रहते हैं। तो जब एक पहुंचे वहां पर यात्रीगण वहां और देखा कि इतने डेड बॉडी जो है जल रहे, अंत्य संस्कार हो रहे, कंटिन्यू चल रहे, तो जब देखा उन्होंने तो ऐसे देखते रह गए, अचंभित रह गए, और बाद में सर को ऐसा हाथ लगने लगे, क्या मूर्ख हूं, क्यों नहीं पहले मैंने सोचा, मेरा जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया है। तो सब लोग बाकी लोग थे उनको अच्छा लगा, कुछ तो अभी फर्क पड़ा है, अभी उन्होंने अपना वापस स्टोरी शुरू नहीं किया है, कुछ तो फर्क पड़ रहा है। फिर वापस पूछा कैसा लग रहा है, लेकिन मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने मेरा जीवन हरी हरी विफल गणायन, मैंने विफल कर दिया है मेरे जीवन को, और कैसा लग रहा है, लेकिन अगर मुझे पता होता यहाँ पर लकड़ी को इतनी महंगाई है, इतनी सारी लकड़ियों की जरूरत यहाँ पे, क्योंकि अंत्य संस्कार के बहुत बड़े बड़े लकड़ी रखते हैं ना, इतने बड़े बड़े पर्वत जैसे ढीग लगे हैं वहाँ पे, बोले कि अगर इतने लकड़ियों की जरूरत यहाँ पर मुझे पहले पता होता तो कपड़े में क्यों बिजनेस करता था, तो लकड़ी में मैं बिजनेस करता था। मतलब ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट इतनी आसानी से जाते नहीं है, वो इतनी धाम घूम रहे सबको घूमने के बाद भी वापस क्या सोच रहे, लकड़ी में बिजनेस करना था, कपड़े में क्यों किया मैंने। तो ये आसक्ति जो अटैचमेंट है इसको हमें धीरे, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा जीवन में आता है सबको छोड़ना होता है, सबको पता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जब पूछा गया कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कई सारे सरप्राइजेस है, आश्चर्य है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति हिमालयम, हर जीव यहाँ पर आता है और एक न एक दिन शरीर छोड़ता है। अपने सामने हम देखते हैं कि पेड़ आए फिर चले गए, कई सारे जानवर आए फिर चले गए, कई व्यक्तियों को हलम खंदा दे के स्मशान भूमि में पहुंचा के आते हैं, फिर अपने जीवन में कभी नहीं सोचते मुझे एक दिन जाना है, कोई सोचता है, कभी नहीं सोचते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य पता है, फिर भी अगर सोचा होता तो कुछ किया होता नहीं। हम लोग सोचते करे हमारे बच्चों के लिए कुछ बना के रखना है, तो हम लोग कुछ पॉलिसीज निकालते हैं, कुछ बना के रखते हैं, हमें 8 दिन के लिए पिकनिक के लिए जाना है तो 4 महीने पहले टिकट निकालते हैं, 8 दिन शॉपिंग करते हैं, 2 दिन बैग भरते हैं, बाद में स्टेशन पर जाते हैं, तो इतना सारा हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कितनी तैयारी हमने जब शरीर छोड़ने के बाद जो समय है उसके लिए तैयारी करते हैं, तो एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इसलिए एक पितामह भीष्म ये हमारे लिए आदर्श है कि जो शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात सामने खड़े हैं, वो अपने शरीर के, शरीर तो सोचे इतने शर्शैया पे, बाणों के शैया पे है, कितनी वेदना होगी, अगर एक कांटा चुभ जाता है कितनी यातना होती है, थोड़ा सर दुखता है कितनी यातना होती है, लेकिन पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण थे, दो बाणों के बीच में एक उंगली नहीं जा सकते थे। इसमें भी भगवान को स्मरण कर रहे थे। सोचिए क्या उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर होगा, क्या उनका ध्यान करने की शक्ति होगी। तो हमको अपने आप को इतनी तैयारी करने की, कुछ भी हो जाए मैं भगवान को नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही भगवान का स्मरण ही हमें अगला जो हमारा पोजीशन है शरीर छोड़ने के बाद जो जाना है। देखते हैं ना, हम लोग जब कोई शरीर छोड़ता है डेथ के बाद, हम लोग कभी तस्वीर बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, और फोटो के नीचे नाम लिखते हैं। नाम के आगे क्या लिखते हैं? जब तक जीवित है हम लोग क्या, हम लोग गांव का नाम बताएं क्या पूछेंगे, बोलेंगे हम लोग वाराणसी है, हम दहीसर बॉम्बे वासी है, ऐसा बोलते हैं, वाराणसी वासी है, सब बोलते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद फोटो के नीचे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी, कैलाशवासी, वैकुंठवासी लिखते हैं। हम लोग वाड़ावासी नहीं लिखते हैं या बम्बई वासी नहीं लिखते, क्या हम लोग कैलाशवासी लिखते हैं या स्वर्गवासी या वैकुंठवासी लिखते, मतलब पता है कि कहाँ गए वहाँ जाने, लेकिन वहाँ जाने की तैयारी क्या की है नहीं। हम लोग सोचिए यहाँ से अगर 1 लाख रुपया लेकर हम लोग दुबई में चले जाते हैं, तो दुबई में जाकर क्या 1 लाख रुपए में हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे शॉपिंग मॉल में? नहीं, क्योंकि यहाँ का पैसा वहाँ चलता नहीं, तो उसको दिरहम में बदलना पड़ेगा। हाँ, दिरहम में बदलेंगे तो दुबई में शॉपिंग होगा। यहाँ से 1 लाख रुपया लेके जाके अमेरिका में शॉपिंग मॉल में शॉपिंग होगा? नहीं हो सकता। उसको डॉलर में बदलेंगे तभी वहाँ पर शॉपिंग हो सकता है। वैसे यहाँ के जो भी चीज़ें हैं शरीर छोड़ते समय साथ में नहीं जाती है, लेकिन साथ में जाने के लिए हमारी पुण्य, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो साथ हमें आगे के जो प्रवास है उसके लिए मदद करते हैं। तो हमने कितनी कमाई है हमारी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक पावर, हमने हमारी आध्यात्मिक पूंजी कितनी कमाई है उसके ऊपर हमारा आगे का गंतव्य स्थित है। तो फिर कैलाश में जाना है या फिर नीचे और कहीं योनि में जाना है, उसके ऊपर डिपेंड है हमने कैसे कर्म किए है, कितना आध्यात्मिक नामस्मरण किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पितामह भीष्म दिखाते हैं कि इतना हमें तैयारी करना चाहिए, इतना भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। लेकिन भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए ऐसा कहीं बताया नहीं गया कि आपको घर बार छोड़ना है। लोग भाई कई बार भारतवर्ष में गलत फहमी है कि भक्ति करनी है तो आपको घर छोड़ना चाहिए, नौकरी छोड़ना चाहिए, सब घर बार छोड़ के आप आश्रम में कहीं आके रह जाओ और फिर आप भक्ति कर सकते। नहीं, भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, खाली जोड़ना है। सोचिए अंतिम समय कुछ भी, 10 एकड़ जमीन कितना साथ में जाता है? शून्य। 10 लाख बैंक में कितना साथ में जाएगा? शून्य। हमारे मोबाइल में 400 नंबर है एकदम क्लोज रिलेटिव्स के, कितने साथ में जाएंगे? शून्य। शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य कितने हो गए? शून्य। लेकिन एक शून्य के आगे एक जोड़ दो कितने होते हैं? 10 हो जाते हैं। 2 शून्य के आगे एक जोड़ दो कितना? 100 हो गए। 3 शून्य के आगे एक जोड़ दो 1000 हो गए। एक क्या है? कृष्ण। खाली एक जोड़ना है, एक जोड़ दिया सारे चीजों को महत्व आ जाता है। देखिए हम यहाँ पर गाड़ी से आए हैं, चल के आए हैं, अभी यहाँ चल रहे हैं, अभी तो आप वृंदावन फॉरेस्ट घूमेंगे, यमुना का दर्शन करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, ये सब करेंगे, चलना है। लेकिन यही चलना कृष्ण के लिए है, भक्ति हो गई। यही चलना कहीं अगर भौतिक संसार में और कहीं यहाँ वहाँ अरे गरे इसमें चले जाएंगे तो भक्ति नहीं हुई, लेकिन धाम में चल रहे हैं भक्ति हो गई, मंदिर के लिए जा रहे हैं भक्ति हो। वही अभी बैठ के हम लोग सुन रहे थे तो यहाँ वहाँ का गाना कुछ भी सुन लिया तो ठीक है, हो सुन ले, लेकिन यहाँ पर आकर कथा सुन रहे हैं, नाम कीर्तन सुन रहे हैं, वो सुनना भी भक्ति हो गई। खाना है तो यहाँ वहाँ खाते रहते हैं, सब तो खाते हैं ना, तो हम लोग कुछ भी खाते रहते, लेकिन भगवान को प्रसाद धराया, भोग धराया, और वो प्रसाद के रूप में जब अन्न, वही अन्न है लेकिन प्रसाद भगवान को धरा के नैवेद्य अर्पण करके वो खाते हैं,
खाना ही है, भक्ति हो गए। तो भक्ति के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, अरे ये नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करके करना। आज मकर संक्रांत का दिन है, आज जो फसल का पहला जो भोग जो है भगवान को धराते हैं। कई सारी जगह पे जो है आज बड़ा उत्सव होता है, खेतों में उत्सव होता है, जब फसल आता है तो उसको ये करना है, बाद में उसको जब पूरा तैयार हो जाता है तो आज खेत में बड़े उत्सव होता है। भाई परसों लातूर में था, वहाँ पे अमावस्या के दिन इतना पूरा गांव, सिटी में एक आदमी नहीं रहता है उस दिन, सारे लोग जो है खेत में आ जाते हैं और खेत में जो है वहीं पे भोजन बनाएंगे, वहीं के पूरे गांव को बुलाते हैं और बड़ा फेस्टिवल जो मनाते हैं। तो पहला फसल का जो अन्न जो है भगवान को अर्पण करने का भी दिन है, आज मकर संक्रांत है। तो इस तरह से ये जो मकर संक्रांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसलिए, इसमें बहुत सारे लीलाएं जो है हुई हैं और एक बहुत विशेष आज लीला है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास पाषदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंत सुमेध सह। जो कृष्ण 5000 वर्ष पहले लीला करने आए थे, वही भगवान कृष्ण कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। नवदीप में 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गोपियों को 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण कहते हैं, आपने जो शरणागति मेरे प्रति दिखाई है, जो शरणागति जो प्रेम आप व्यक्त कर रहे हैं, न पारयेत अहम्, ब्रह्मा जी के एक पूरे दिवस में भी मैं अगर आपकी सेवा करूँ तो आपके ये जो प्रेम है, आपका जो लगन है, इसकी कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा, परत फेर कभी उसको मैं वापस नहीं चुका पा। कौन? कृष्ण गोपियों से कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जब वंशीवदन वंशीवट के नीचे शुरू किया, सारी गोपियां जैसी स्थिति में थी घर बार छोड़ के भगवान कृष्ण के लिए दौड़ने लगे। कोई घर में गाय का दूध निकाल रहे थे, बर्तन वही छोड़ा, जैसे वंश ध्वनि कान में प्रवेश की, क्योंकि भगवान के जो वंश ध्वनि, हम लोग कभी कभी कहते कि मैं 10 साल से जप कर रहा हूँ, मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, फिर भी कृष्ण की ध्वनि क्यों नहीं सुनती है, वंश ध्वनि की आवाज़ क्यों नहीं आती है? क्योंकि सुबह का आराम सुनते, कई बार सुनते नहीं है ना, हम लोग सुबह का अलार्म होता है 5 बजे 4:30 बजे तो उसको बंद स्नूज पे डाल देते हैं, फिर वापस 5 मिनट के बाद आवाज़ आता है, फिर वापस उस स्नूज पे डालते हैं, तो कई बार उसको बंद कर देते हैं कि तो वो अलार्म अगर हम लोग अभी सुन नहीं पा रहे तो वंश ध्वनि कहाँ से सुनेंगे। तो वंश ध्वनि सुनने के लिए अपने आप को उतना शुद्ध बनाना है, भगवान के प्रति वो जो आकर्षण है, वो गोपियाँ सबको छोड़कर जैसे थे वैसे ही जो सर्व कर रहे थे, गाय का दूध निकाल रहे थे, बच्चे को, वो सबको छोड़ के सीधे आधे रात के समय में जो है अपने वहाँ निकले जहाँ वंशी का ध्वनि आ रहा था उस दौर, और जंगल में पेड़ हैं, कांटे हैं, जंगली प्राणी हैं, कुछ विचार नहीं है, इसे कहते कि एब्सोल्यूट सरेंडर, 100% शरणागति। तो ऐसे जब गोपियां घर बार सबको छोड़कर भगवान कृष्ण की ओर भागने लगे, तो भगवान कृष्ण वही विचार करते हैं कि इस लीला में एक आपने मेरे लिए घर छोड़ा है, अगली बार जब मैं आऊंगा आपके लिए मैं घर छोड़ूंगा। वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो 24 वर्ष तक नवदीप में लीला करते हैं, सांगो पांगास पाषदम यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ लेकर आए थे, जो रासलीला का जो आनंद है वही आनंद कलयुग में रासलीला कोई समझ नहीं पाएगा। कभी भी हम लोग देखते हैं, लोग बोलते रहे कृष्ण ने 16000 रानियों के साथ विवाह किया, तो मैं तो 2-4 तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम लोग कृष्ण की रासलीला है जैसे हम लोग भी डांडिया खेलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण और राधा राधा रानी है, गोपियों का जो वर्णन है ये कोई भौतिक स्त्री पुरुष का आकर्षण का वर्णन नहीं है, ये कोई वासना नहीं, वो आत्मा और भगवान का वो मिलन है। जैसे हम इस संसार में भी एक थोड़ा सा क्षण रूप में भी एक अगर वात्सल्य का माता और छोटा बच्चा जो होता है, क्या वात्सल्य होता है, थोड़ा सा निस्वार्थ निरागस सेल्फलेस प्रेम जो हम बचपन में देखते हैं माता और बच्चों के बीच में, ये उसका उच्चांग जो है सर्वश्रेष्ठ ये गोपियां और भगवान कृष्ण के बीच में है। ये गोपियां जो है सर्वसाधारण जीव नहीं है, दंडाकरण्य में एक जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में भ्रमण कर रहे थे, कई सारे ऋषि मुनि जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें आपकी सेवा करने, आपका सहवास चाहिए, हम आपके साथ रहते हैं, चाहे तो श्री रूप धारण करके हम आपकी सेवा में रहें। कौन तो कोई भी रूप धारण करते, इतने बड़े ऋषि मुनि है। तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि इस लीला में मैंने एक पत्नी धारण किया है, खाली सीता ही मेरी पत्नी हो सके, और दूसरा विवाह नहीं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अगली लीला में जब आऊंगा आप सबका मैं स्वीकार करूंगा। ये कौन, ये सारे दंड करने में जो ऋषि मुनि थे ये गोपियां बने थे। तो ये जिन्होंने सब संसार का सुख विलास सबको छोड़ दिया है, ये ऋषि मुनि है गोपियां, तो उनका क्या स्त्री पुरुष आकर्षण के लिए थोड़े वो वहां पर नृत्य करते, ये तो शुद्ध अति शुद्ध रूप में जो है भगवान से मिलने का वो स्वरूप है। ये मुनिचारी गोपी है, स्मृतिचारी अलग अलग गोपियों के स्वरूप है। तो वही गोपियों का ऋण चुकाने के भगवान कृष्ण अगली बार जब आऊंगा तो कौन, अगली बार मतलब कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और आज का दिन है मकर संक्रांत, पहली बार जब उन्होंने पंडरपुर में ईश्वरपुरी जी जो है माधवन पुण्य के जो शिष्य थे उनसे दीक्षा ली थी, और संन्यास के बाद जो है केशव काश्मीरी उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो ये एक केशव भारती जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। तो जो संन्यास दीक्षा का जो उत्सव जो मनाया था, संन्यास दीक्षा लिए थी, वो आज मकर संक्रांत के दिन ली थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के जो युग अवतार है वो भी आज के दिन संन्यास लेकर वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य धारण किससे, निज भक्ति अपनी खुद की भक्ति कैसे करनी है वो सिखाने के लिए वो दर दर यहाँ वहाँ स्वयं भगवान है लेकिन संन्यास रूप धारण करके भ्रमण करे। और शिक्षार्थ एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, चैतन्य महाप्रभु है ये स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीर धारण करके कैसे भक्ति करने हैं, और खास करके कलयुग में कैसे भक्ति करनी है, भगवान का नाम स्मरण करना है। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे जड़तील पापे जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के पाप करें। इस संसार में दुख क्यों ज्यादा है, क्योंकि पापों का बहुत ज्यादा है, जितने पाप कर्म है ज्यादा उतना दुख ज्यादा, जितने सुख का प्रमाण ज्यादा उतना, जितना पुण्य ज्यादा उतना सुख ज्यादा है। जीवन में हमें अपने जितने आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं उतने हमारे भविष्य के जो है अच्छे दिनों के लिए, या अपने खास करके जो आत्मा है उसको अंततः भगवान को मिलना है। तब तक जैसे यहाँ पे कोई रहता है गांव में, उनका बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बम्बई में कहाँ अंधेरे में मलबार हिल में अपना कोई फ्लैट होगा बंगलो होगा नहीं, वहाँ जो रहते हैं उनको लगता है बहुत पैसा कमाएंगे बहुत पैसा कमाएंगे, फिर मैं यहाँ गांव में कहीं वो इतना नदी के किनारे हम लोग बंगला बांधेंगे, जो यहाँ रहते हैं उनको लगता है उधर सुख है, जो वहाँ रहते हैं उनको लगता है इधर सुख है, क्योंकि सुख हमेशा आगे दौड़ता है, क्योंकि सुख जो है हम लोग ये मरते शरीर के प्रति ढूंढ रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है तब तक सुखी नहीं होता जब तक हम भगवान के भक्ति में रंग नहीं जाते हैं। तो मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी आहार निद्रा भय मतलब सारे इसमें हो चुका है, हाथी से ज्यादा कौन खा सकता है, 300 किलो दिन में खा सकते हैं, खाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, सोने के लिए जो भालू होता ना 6 महीने तक विश्व रूप पे सो सकता है, सोने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, उड़ने के लिए तो पंछी ज्यादा अच्छा उड़ सकता है, तो भोग करने के लिए सबके लिए मनुष्य जीवन जितना आवश्यक है उतना जरूरी लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन जो है खाली भक्ति करने के लिए दिया है, और इतना आसान मार्ग दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम कली कलमश नाशनम, इति षोडश 16 अक्षर जो मंत्र है, इति षोडशकम् नाम कली कलमश, कलियुग के सारे कलमश जो है इससे दूर हो सकते, कली कलमश नाशन ना तो परतरो पाए सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में भी जब ढूंढ के इससे अच्छा उपाय नहीं मिल सकता कलयुग में भक्ति करने के लिए। इसलिए हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गत्रेन तक, कलयुग में हरे नाम के बिना सर कोई 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 उपाय नहीं है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो बाकी संसार में प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन सर्वोच्च प्रेम जो है जब ये आत्मा का भगवान के प्रति होता है, ये जो भक्त का भगवान के प्रति जो है सबसे शुद्ध सर्वोच्च ये प्रेम है, इसके लिए मनुष्य जीवन है। तो एक आज बहुत ही विशेष दिन है कि मकर संक्रांत है, और मकर संक्रांत के एक दिन आप यहाँ पर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आज हमें एक पितामह भीष्म को स्मरण करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है कि नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति, कलयुग में नाम के रूप में जो है भगवान प्रकट हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब थोड़ा सा समय निकाल के हमें एक दिन में नाम स्मरण तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि देखो मनुष्य जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने, लोग कभी कभी कहते हैं कि भगवान ने क्या दिया है हमें, संसार में एक मोबाइल यूज करते पैसा भरना पड़ता है, कपड़ा यूज करते पैसा भरते हैं, घर में यूज बिल इलेक्ट्रिसिटी सबका बिल भरते हैं, क्या कभी हमने एक सूर्य प्रकाश का बिल भरा है? नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या कभी हमने बारिश का बिल भरा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो छोड़ो, 4 मिनट के लिए नाक कान बंद कर दे, नाक और मुंह बंद कर, सांस बंद कर एक तो मर जाएंगे। सोचिए एक सांस अगर कहीं जीवन के अंत में वेंटिलेटर में चढ़ना पड़ा, हॉस्पिटल में दिन का लाखों रुपए बिल होता है, ऑक्सीजन वही वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन है, दिन का लाखों रुपए बिल भरते हैं, वही ऑक्सीजन जीवन में फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, कभी बिल भरा है? वही भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, हम लोग क्या कहते हैं समय नहीं है, कि इतना व्यस्त जीवन है, इतना बिजी लाइफ है, प्रभु जी मरने के लिए भी टाइम नहीं है, आता है तो कोई छूटता नहीं, लेकिन इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने दिया है, और उसके प्रति हम लोग अगर आधा घंटा नामस्मरण नहीं कर सकते हैं, 24 घंटा दिया हमारे लिए, उसमें से 10-15 मिनट निकाल के आधा घंटा निकाल के अगर नामस्मरण नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, जिन्होंने कुछ मदद किया उसको नहीं देना कृतज्ञता होती है, कृतज्ञता मतलब किसने दिया है उसको वापस हम किसके लिए कुछ कुछ करना चाहते हैं कृतज्ञता है। तो थोड़ा सा समय निकाल के जरूर नाम स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। भी हम थोड़ा और जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, और इतना आवाज होना चाहिए कि जितने जीवी में लोग घूम रहे सबको आवाज आनी चाहिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आप सामने लोग बोल रहे, लेकिन आजू बाजू लोग कोई बोल नहीं रहे, आप सब लोगों को जितने मंदिर में और जो बाहर भी खड़े हैं सबको बोलना चाहिए जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे रामा
हरे रामा
हरे रामा
हरे रामा
हरे हरे
हरे हरे।
थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, इसके मतलब हमको प्रसाद लेने के लिए जाना है, तो प्रसाद भी आपका रहा देख रहा था, और थोड़ा जोर से बोलेंगे, मेरे से आवाज बड़ी आनी चाहिए आपके। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे रामा
हरे रामा
हरे रामा
हरे रामा
राम रामा
राम रामा
हरे हरे
हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको मकर संक्रांति का महत्व जो है इसके बारे में समझाया हमें, तो इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी है। तो आप सभी का यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में जो आए हैं, आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए, तो आपकी बहुत 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 धन्यवाद। और हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा वृंदावन बेरी के कि आपका ये आज का दिन जो है आपके उज्ज्वल कृष्ण भावनामय जीवन का एक अच्छा शुरुआत बने, और ऐसे ही हर रविवार को आप यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते रहें। तो अभी यहाँ पे राजभोग आरती होगी, तो हम सब खड़े हो जाएंगे राजभोग आरती के लिए। तो प्रभु जी लोग जो है इस साइड में खड़े हो जाएंगे, माता एक साइड में खड़ी हो जाएंगी, और फिर राजभोग आरती होने के बाद दोनों मंदिर में राजभोग आरती होगी। इसके पश्चात यहाँ पे ललिता भवन हॉल है, वहाँ पे सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पे वृंदावन फॉरेस्ट है, तो उस वृंदावन फॉरेस्ट में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हमारे कुछ भक्त वहां पे आपको गाइड करेंगे, तो वो भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।